ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वीत् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजस योजिताङ्घसाम् के वयं नामरूपाभ्याम् यदुभिः सह पाण्डवः भवतो दर्शनं जर्हि श्रीकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र जथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्वृद्धाः सुपकौषधिभिरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्त ये धन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धे दृढं पाण्डुषु भृष्मिषु त्वयि मे नन्यविषया मतिर्मधुपतेशकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गे वौघमुदन्वते श्रीकृष्ण कृष्ण सख भीषण ऋषभावनिध राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते सूत उवाच पृथ्येथं कल्पदैः परिणूताखिलोदयः मन्दं जहाशु वैकुण्ठ मोहयन्निव मायया तां बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसावयम् स्त्रियश्च स्वपुरं जास्यान् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः क्या अद्य आज नः हमें त्वं आप सुकृते हिता अपने स्वजनों के लिए आपका जो भी कर्तव्य है आप कर चुके हैं। प्रभो हे स्वामी जिहाससि जाना चाहते हैं, छोड़कर जाना चाहते हैं, स्वीत क्या सुहृदः अपने अत्यंत प्रेमियों को, अनुजीविनः जो आपके बिना नहीं जी सकते हैं, उनको जेसाम जिनका, जेसाम जिनका ना च और अन्य आपके अतिरिक्त अन्य भवतः आपका पदाम्बुजात पदाम्बुज के अतिरिक्त परायण आश्रय राजसु राजाओं के साथ जो ये कांघसाम हमने जानबूझकर बैर किया है, राजाओं के स्वजन युद्ध में मारे गए हैं, अतः इस कारण वे हमसे बैर की गांठ बना लिए हैं। तो पृथा इसके पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार के कारणों का उल्लेख कर रही है। वो कहती है मैंने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि आप महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति बढ़ाने के लिए अपने प्रिय जदु महाराज के वंश में जन्म लिए हैं, और जदु महाराज तथा युधिष्ठिर महाराज इन दोनों की कीर्ति बढ़ाने के लिए अब जन्म लिए हैं। जैसे मलय पर्वत पर चंदन जन्म लेता है तो उस चंदन के कारण मलय पर्वत का यश बढ़ता है। इसके साथ ही साथ कुछ है, महात्मा गण ऐसा कहा करते हैं कि देवकी और वसुदेव ने आपको पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तप किया था, इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आप देवकी के गर्भ से जन्म लिए, यद्यपि आप अजन्मा हैं। और कुछ है महानुभाव गण कहा करते हैं कि आप इस विश्व के हित के लिए और असुरों के वध के लिए जन्म लिए। कुछ का ऐसा कहना है कि यह पृथ्वी अतिशय भार के कारण उसी तरह से दुख पा रही थी जैसे समुद्र के बीच अति भार के कारण कोई नौका अब डूबे तब डूबे की हालत में हो। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने आपसे अवतार लेने के लिए प्रार्थना किया तो आप अवतार लिए। और कुछ विद्वानों का यह कहना है इस संसार में जीव बहुत क्लेश भोग रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दुख भोग रहे हैं, उन दुखी जीवों को सुखी करने के लिए आप उनके श्रवण स्मरण कीर्तन करने लायक लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। और प्रभु मेरा तो यही मत है, अंतिम मत ही मेरा मत है। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः तावेव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् तव इहितं। आपके कर्मों को आपकी लीलाओं को ये जनः श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति स्मरन्ति और अन्य कीर्तमानम अभिनन्दन्ति ते एव तावकम पदाम्बुजम अचिरेण पश्यन्ति। पश्यन्ति एव बहुत शीघ्र दर्शन करते हैं। और आपके चरण कमल की विशेषता, आपकी यह विशेषता है कि आप जब प्राप्त होते हैं तो सदा के लिए जीव का भावबंधन समाप्त हो जाता है, वह आपकी नित्य लीला में आपके समान सुखी हो जाता है। तो अपनी नित्य लीला में वैकुंठ लीला में सबको खींचने के लिए आप अवतार लेते हैं। ऐसे सभी कारण सत्य हैं, लेकिन मेरे मन के अनुकूल पूर्ण रूप से यही कारण लग रहा है। आप परम करुण हैं, जीवों का हित करने के लिए अवतार लेते हैं। इतनी ऊंची ऊंची बात कहने के बाद भी अब देखिए कुंती महारानी कहती हैं कि इस समय इदानी तव अस्मत परित्यागो अनुचित इति आशयना। इस स्थिति में हम सब बंधुओं का त्याग करके आपके लिए जाना उचित नहीं, अनुचित, इस समय मत जाइए। इसका कारण बता रही हैं। पहले कह रही हैं, हे स्वकृते हित प्रभो स्वानाम अर्थे यो कृत्य स कृत त्वया इति संबोधन। अपने भक्तों के लिए, पांडवों के लिए या मेरे लिए जो कुछ भी आपको करना उचित था आपने किया, सब कुछ किया हम लोगों के लिए, लेकिन प्रभु क्या आप हमें आज छोड़कर जाना चाहते हैं? अपिश्री किम जिहाससी, क्या आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं? हम आपके सुहृद हैं, हम आपके सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ है अतिस्निग्ध, हम आपके अनुगामी हैं, हम आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं। और मतलब पुत्रों के पक्ष से बोल रही हैं कुंती महारानी, हम आपके स्निग्ध हैं, प्रेमी हैं, और इसके साथ ही साथ हम आपके अनुजीवी, आप हैं इससे हम जी रहे, हम जी नहीं सकते हैं आपके बिना। तो क्या आज आप हमें छोड़कर द्वारका जाना चाहते हैं? चले ही जाएंगे, इस तरह से वितर्क प्रश्न कर रहे हैं। अप्यद्य नस्तुम स्वकृते हित प्रभो जिहा ससी स्वित सुहृदो न जीवी न, अपने सुहृदों को, अपने अनुजीवियों को, हम पांडवों को छोड़कर क्या आप जाना चाहते हैं? जैसा मिजान्यत भवतः पदाम्बुजात परायणम, हम लोगों का कोई परायण नहीं है, कोई आश्रय नहीं है भवतः पदाम्बुजात, आपके चरण कमल के अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं है इस संसार में। बल्कि संसार के जितने भी राजवंश हैं, राजा लोगों के परिवार हैं, उन सबसे हम लोगों का बैर हो गया, सब हमसे बैर छान ली। राजसु योजित अंग शाम, अंग का अर्थ होता है अपराध, क्योंकि हमने इस युद्ध में राजाओं को मारा है, तो उनका परिवार, उनके संबंधी सभी हमसे रंज दुखी। यह बात नहीं है कि हम लोग कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत करके सुखी हो गए, पहले तो अपने वंश बैरी था, अब तो सारा विश्व बैरी हो गया, क्योंकि इस युद्ध में विश्व के प्रायः सभी राजा भाग लिए, तो उनके बंधु बांधव इसमें मारे गए। तो आपके अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं, ऐसा एक बैरी आज कितना कठिन आक्रमण किया ब्रह्मास्त्र से, क्योंकि उसका पिता मारा गया, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य से मारे गए, इस कारण से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। पता नहीं कितने कितने अश्वत्थामा हमसे बदला लेने के लिए तैयार होंगे। अतः इस दशा में हम लोगों को छोड़ करके जाना आपके लिए उचित नहीं। हमको तो क्षण भर में कोई मार सकता है, भगवान के सामने भी कुंती महारानी कहती हैं आपका हमको छोड़ करके जाना अनुचित। इस प्रकार से यह नारी हृदय है वास्तव में भगवान को पूर्ण समर्पित हृदय। कुंती महारानी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी हैं, कृष्ण के बिना कोई रक्षक नहीं, कृष्ण के बिना कोई आश्रय नहीं। जेषाम न चान्यत भवतः पदाम्बुजात परायणम, भवतः पदाम्बुजात जेषाम अन्यत परायणम न, आपके अतिरिक्त हम लोगों का कोई आश्रय नहीं, कोई रक्षक नहीं है, बल्कि दुनिया भर से बाहर हो गए, सब विरोधी ही हो। जिनके स्वजन मारे गए हैं तो सब जानते हैं कि युधिष्ठिर ने युद्ध किया, अर्जुन ने युद्ध किया, इसलिए सब युधिष्ठिर के बैरी हो गए हैं और सभी इसी अवसर की प्रतीक्षा में है कि कब युधिष्ठिर से बदला लिया जाएगा, या अर्जुन को कब मारा जाएगा, भीम को कब मारा जाएगा। चूंकि महारानी कुंती एक सम्राट की माता है, राज माता है, तो भवन में रहने पर पूरे विश्व का समाचार आता था किधर किसका क्या प्लान हो रहा है। राजा को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। जिनके बंधु बांधव मारे गए थे उनके पास से महाराज युधिष्ठिर ने कुछ गुप्तचर लगाए थे संवाद लाने के लिए कि हमारे विषय में क्या बात करते हैं, तो प्रायः सभी के स्वजन जो बचे हुए थे वे युधिष्ठिर से बदला चुकाना चाहते थे। इसी सत्य को कह रही है कुंती महारानी की, प्रभो हे हमारे रक्षक, हे हमारे आश्रय, रक्षा करने में सर्वसमर्थ, क्या आप सचमुच हमें छोड़कर चले जाएंगे? हम आपके सुहृद, हम आपके प्रेमी हैं, आपके आपसे ही हम जीवित हैं, आप इस जगत में हैं तो हम लोग जी रहे हैं, आपके बिना नहीं जिएंगे। और यह बात पूर्णतः सत्य है। जब ही महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान कृष्ण इस धरा धाम का त्याग करके अपने नित्य धाम में चले गए, उसी समय उन्होंने मुकुट उतार कर फेंक दिया, मैं राजा नहीं रहूंगा अब, और हस्तिनापुर का राज पर भूमंडल का राज छोड़कर हिमालय चले गए। यही अर्जुन के मुख से उन्होंने सुना कि कृष्ण नहीं है, बस हो गया राज्य करना, सब कुछ छोड़कर कुछ चले गए। कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए राज्य कर रहे थे। तो कुंती अपने पुत्रों के मनोभाव का अनुवाद कर रही है और अपनी बात भी कर रही है, पुत्र सब वही हैं, पुत्र वधु द्रौपदी भी है, तो सबको अपने आलिंगन में लेकर के सबको आत्मसात करके कहते हैं कि हम आपके अनुजीवी, अनुजीवी का अर्थ है कि आप जीवित हैं तो हम जीवित, मतलब आपके कारण हम जीवित, राज छोड़ करके चले जाएंगे तो हमारी दशा वह होगी जैसे जीव इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, कोई काम नहीं करती, तो क्या आप चले जाएंगे? इसमें अपी और श्री दो अव्यय है, एक प्रकार का प्रश्न है कि आप चले जाएंगे, क्या आप इतना निष्ठुर हो जाएंगे? अब तक तो रह रह करके बचा रहे थे, अभी अभी पांडवों को बचाए थे, जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है, परीक्षित को बचाए कर, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम लोगों की विपत्ति दूर हो गई है और इसलिए अब आप जाना चाहते हैं? नहीं, आपका जाना उचित नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण मानो अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ जी ननु तव बंधवो जदव पुत्रश्च पांडवा शूरा समर्थश्च तत्किं कार्पण्यं भासते। बुआ जी आपके नैहर के लोग जादव बहुत बड़े वीर हैं, समर्थ हैं, यदि राजा आपके विरोधी हो गए हैं तो करेंगे क्या? आपके जो बंधु हैं द्वारका में जादव, वे बहुत समर्थ हैं, वीर हैं, और पांडव भी जिन्होंने इस विश्व युद्ध को जीता है, महाभारत को जीता है, ये भी शूर और समर्थ हैं। फिर इस तरह से क्यों अपने को हीन कह रही है? तुम्हारे भाई हैं, मतलब हमारे पिताजी, तुम्हारे भाई हैं, भतीजे हैं, बंधु हैं, सब भरे पड़े हैं, और अपने पांच पुत्र भी हैं, एक एक पुत्र पूरे विश्व को जीतने वाला है, तो क्यों इतना दीन भाव से बोल रही है? क्या हमारे बिना तुम्हारी रक्षा नहीं होगी? और इसी पर कुंती महारानी कहती हैं, केवयम नाम रूपाभ्याम जदुभि सह पांडवः भवतो अदर्शनम जर्हि हृषी काल निवेशितुः।
जदुभि सह वयम पांडवा के, यादवों के साथ ही हम पांडवों का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है? जब तक आप साथ में हैं तब तक अर्जुन में बल है, भीम में बल है, आप नहीं रहेंगे तो इनमें कोई बल नहीं रहेगा, यादव हो या पांडव हो। जब तक आप हैं साथ में तब तक इनमें वीरता है, पराक्रम है, आप नहीं रहेंगे तो हम लोगों की वही दशा हो जाएगी जैसे ईश के बिना इंद्रियों की दशा होती है। इंद्रियों का ईश है, स्वामी है जीव। जीव जब तक देह में है, जीव जब तक देह में रहता है तब तक इंद्रियां काम करती है, आंख देखती है, कान सुनता है, हाथ काम करता है, पैर चलता है, लेकिन जैसे ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है इंद्रियां किसी काम की नहीं रहती। ये वयम नाम रूप है, इंद्रियों का नाम भी उस समय रहता है, यह इंद्रिया है, रूप भी रहता है, लेकिन रूप और नाम रहते हुए भी क्या महत्व रहता है? कोई बहुत प्रसिद्ध आदमी मान लीजिए मर जाए, मरते ही रहते हैं, प्रसिद्ध हो या अप्रसिद्ध हो, तो जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है, मरने का मतलब यह। और जीव के शरीर से विदा होते ही कोई इंद्रियां काम नहीं करती। बहुत बड़ा विद्वान हो और मान लीजिए आज ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके नाम से पत्र आ गया, तो उसके आंखों के पास ले जाए कोई कि ये बाँचिए आपका पत्र आ गया, तो हो गया बाँचने। जब तक जीव शरीर में था तब तक वो आंखें काम कर रही थी, ये कोई कुछ कहे तो वो सुन नहीं सकता है, कोई सुंदर पुष्प ले जाए उसकी नासिका के पास सुंघ नहीं सकता, चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अब इंद्रियों का नाम है, कोई कहे आंख तो है, आंख है और नाम भी है और रूप भी है, कान है, नाम भी है रूप भी है, लेकिन नाम रूपाभ्याम, नाम और रूप के रहते हुए भी क्या वैल्यू है जीवात्मा के बिना इंद्रियों का? यही दशा हमारी है प्रभु। आप हैं तब तक हम लोगों में पराक्रम है, तेज है, सब कुछ है, आप नहीं रहेंगे तो हमारी कोई कीमत नहीं, हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, इसलिए आप हमें छोड़कर मत जाइए। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है तो इस स्थिति को समझ पाता है वास्तव में कि कृष्ण के बिना सब कुछ व्यर्थ। इस संसार में अज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे बहुत बड़े स्वजन हैं, होम मिनिस्ट्री में हमारा सोर्स है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा वो है, लेकिन वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कृष्ण के बिना कोई सोर्स कुछ भी काम नहीं करेगा। कृष्ण वास्तविक रक्षक। क्या है जादव और क्या है पांडव आपके बिना? दृष्टांत दे रही हैं हृषिका नाम इव ईशितु, जीवात्मा के बिना जैसे ईशितु अदर्शनम, जीवात्मा के अदर्शन के साथ ही मतलब उसके शरीर से विदा होते ही इंद्रियां काम नहीं करती। और जीव क्या है? जीव भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत तुच्छ अंश है, तो एक प्रकार से कृष्ण ही शरीर को जीवित रखे हुए, क्योंकि उनका अंश जीवित किया है। जैसे सूरज की एक किरण आकर के कहीं कुछ काम करे तो वह कार्य सूरज का माना जाएगा, है ना, क्योंकि वह किरण सूरज का अंश है। तो इतने शरीरों में हम सभी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, पर ये नहीं समझते हैं कि कृष्ण की शक्ति ही शरीर को जिला रही है, कृष्ण के कारण शरीर हिल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इस स्थिति को समझना चाहिए, इस रियलाइजेशन की आवश्यकता है वास्तव में। कभी भी किसी प्रकार से मन में दूसरे का भरोसा नहीं होना चाहिए।
जब ही सूर्य अस्त हो जाता है और प्रकाश नहीं रहता है तो आंख में देखने की कोई शक्ति नहीं रहती है। तो उधर मान लीजिए सूर्य भी न रहे, प्रकाश भी न रहे और जीवात्मा भी निकाल दिया जाए, तब क्या देखेंगी आंखें? कुछ नहीं देख सकती। आंखों से हम नहीं देख रहे हैं, देखने वाला भीतर है वो देख रहा है, आंख नहीं देख रही है और न तो प्रकाश देख रहा है। कोई अंधे आदमी के पास, मरे हुए आदमी के पास 1 करोड़ वाट का बल्ब जला दीजिए, जैसे सूर्य ही साक्षात उदित हो जाए और मरा हुआ आदमी है तो क्या देखेगा? भीतर देखने वाला चला गया, जो शरीर में रहकर देख रहा था, सुन रहा था, बोल रहा था, खा रहा था, चला गया। तो जीव की अनुपस्थिति पर जो दशा इंद्रियों की होती है वही दशा हम पांडवों की और जादुओं की आपके बिना है। मैं जानती हूँ कि हमारे नैहर के हमारे भाई वसुदेव जी या भतीजे प्रद्युम्न आदि जो भी हैं, नहीं बलराम आदि, ये तभी तक बलवान है जब तक आप है। और ये देखा भी गया है श्रीमद् भागवतम में कि अपनी अंतिम लीला में भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को यह संदेश दिया अपने सारथी को, कहा कि जब अर्जुन आएंगे तो उनको कह देना कि मेरी पत्नियों को महाराज युधिष्ठिर के आश्रय में ले जाएंगे। और भगवान भेंट नहीं किए अर्जुन से, विरह में रुलाने के लिए भेंट नहीं किए। इतना प्रेम करते थे अर्जुन से लेकिन जाते समय भेंट नहीं किए। संदेश दे गए दारुक से कि कह देना महाराज, कह देना अर्जुन को कि हमारी पत्नियों को महाराज युधिष्ठिर के आश्रय में ले जाऊं। तो अर्जुन आए, बहुत विलाप किए, अंत में भगवान की आज्ञा का पालन किए। भगवान की कुछ पत्नियों को वे ले जा रहे थे हस्तिनापुर महाराज के आश्रय में रखने के लिए। तो वृंदावन के पास भीलों ने अर्जुन को लाठी से हरा करके छीन लिया स्त्रियों, जबकि देवता इनके सामने कुछ नहीं थे। और वही गांडीव धनुष अर्जुन का था, वही गांडीव धनुष था, रथ था, घोड़े थे, वही अर्जुन थे, लेकिन कृष्ण के बिना भीलों ने, गोपों ने लाठी से मार पीट करके छीन लिया। वास्तविक बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण ही भीलों के रूप में बने थे, वे अपनी पत्नियों को वही वृंदावन में रखना चाहते थे, इसलिए वे अर्जुन को हरा कर छीन लिए। वास्तविक सिद्धांत यह आचार्य लोग इसको समझाए, लेकिन जो कुछ भी हो बाहरी दृष्टि से देखा गया कृष्ण के बिना अर्जुन का कोई वैल्यू नहीं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की कथा में लिखे हैं, बोले हैं कि जब कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मर जाता है तो एक बच्चा भी जा करके उसके सिर पर जूता मार सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इवन चाइल्ड कैन किक ऑन हिज फेस, ऐसे भी मान लीजिए कोई मर गया बहुत बड़ा आदमी और उसका कोई रक्षक नहीं है, तो एक बच्चा भी खेलते खेलते जाएगा तो कहेगा उठो, मार सकता है पैर से, लेकिन उस पर हो वहां वो क्या करेगा? वही आदमी जब जीवित होता है तो ऐसे ऐसे बच्चों को उठाकर पटक देता है, फोन करता है, क्या क्या करता है, लेकिन जब जीवात्मा नहीं रहा, प्राण नहीं रहा तो सब बेकार। इंद्रियां रहती हैं, उनका नाम भी रहता है, रूप भी रहता है, लेकिन लेकर के लोग जला देते हैं किसी काम का नहीं। कृष्ण के बिना यही दशा है समाज की, परिवार की, देह की। यह देह तभी तक सुंदर है जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति है। यदि कृष्ण की भक्ति नहीं है किसी के देह में तो वास्तव में मरा हुआ है, बिल्कुल मुर्दा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब तक जान नहीं है शरीर में तो वो शरीर व्यर्थ है। भक्ति नहीं है किसी के देह में तो वास्तव में वो मरा हुआ है, बिल्कुल मुर्दा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जब तक जान नहीं है शरीर में तो वो शरीर व्यर्थ है। मान लीजिए कहीं लड़ाई छिड़े और मुर्दों के देह पर लिख दिया जाए लेफ्टिनेंट मार्शल और इनको कहा जाए कि चलो ट्रक से ले जाकर के लड़ाएंगे, तो क्या लड़ेंगे, जहां तहां पड़े रहे। नाम रख दिया जाए कि ये सेनापति हैं, मार्शल हैं, कि इस तरह से नाम क्या करेगा या रूप भी क्या करेगा। ये भयम नाम रूपा भयम, जब आत्मा नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ। और आत्मा के भी आत्मा भगवान है, तो परम आत्मा। कुंती ने भाग्यवश इस बात को जान लिया था। कुंती के इस उपदेश को हमें समझना चाहिए। मैं बारंबार कहता हूं श्रील प्रभुपाद जी इसी से टीचिंग सॉफ्टवेयर कुंती लिखी, कुंती महारानी की शिक्षा। उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने ये सब बातें कह करके एक प्रकार से जगत को शिक्षा दी है। जैसे मैं कृष्ण को अपना आश्रय बनाई हूं, अपना रक्षक समझती हैं, उसी तरह से तुम भी समझो। किसी मनुष्य को बहुत गर्व रहता है अपने परिवार का, जो हमारा परिवार इतना बड़ा है, ये है वो है, एक से एक कमाने वाले और एक से एक सोर्स वाले हैं। और राजा हो जाए तो कोई कितना गर्व होगा, केवल टिकट बनाने का सोर्स मिल जाए रेल का भी, वो भी तो भी लोग कहते हैं एक हमारा आदमी है वो टिकट बनवा सकता है, बहुत भारी काम हो रहा है। ये हमारा आदमी है, वहां हमारा आदमी है, वो हमारा आदमी, वहां हमारा आदमी, वहां। कृष्ण के अलावा कोई आदमी हमारा है ना वो काम कर पाएगा। वो भी जो काम कर रहा है वो कृष्ण की शक्ति उसमें है, जीवात्मा, इसलिए वो कर रहा है। ममई वांसो जीव लोग के जीव होता सुना भगवान कहते शरीर में जो चेतन तत्व तो है वो मेरा ही अंश है और किसी का नहीं है। तो अब वह वैज्ञानिक हो जाए, चाहे फिलोसफर हो जाए, चाहे राष्ट्रपति या सेनापति, कुछ भी हो, वो तो कृष्ण का अंश हो रहा है ना। कृष्ण का अंश उसमें वो राष्ट्रपति बना हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, बहुत बड़ा विद्वान लेक्चर देता है वो, चाहे वैज्ञानिक, कुछ भी, कृष्ण का एक छोटा सा अंश वैमान बना रहा है, ये कंप्यूटर बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन श्री कृष्ण जैव ही पावर हाउस से उस जीवात्मा को खींच लेते हैं, उस शरीर से जा खत्म। अब कोई इंजेक्शन दे करके और जैसे तैसे सोचे कि वैज्ञानिक को जीवित करके फिर से विज्ञान का काम करवा दे, नहीं करा सकते। जैसे पावर हाउस से अगर बिजली कट जाए तो इसे ट्यूबलाइट को ठोक करके या गाली दे करके पीट करके फिर हम नहीं ला सकते हैं इसमें लाइट, है ना। कई बार लोग सोचते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कोई मर जाता है तो लोग सोचते हैं कुछ उपाय करना चाहिए, ब्रिंग लाइफ बैक, फिर से प्राण डाला जाए, फिर से प्राण डाला जाए। वो कहां गया कि लाओगे वो उसको बैक। जो सूरज की किरणें सूरज के साथ चली जाती हैं तो फिर इनको कोई बैक लाएगा या सूरज से अलग करके कोई रख सकता है, नहीं, संभव नहीं। किसी शरीर में जीव कब तक रहेगा यह कृष्ण के हाथ में है। और वो जब अपनी उस किरण को, अपने अंश को हटा लेते हैं तो अब रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हाँ, क्या हुआ क्या। तो भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं ममई वांसो जीव लोग के जीव होता सनातन, और फिर कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम व गुणान्वितम विमुद्धा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु। विमुद्ध नहीं जानते हैं कि वो मेरा अंश है और कैसे शरीर छोड़ता है और कैसे शरीर ग्रहण करता है, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु लोग समझ जाते हैं कि कृष्ण का अंश है और इस प्रकार शरीर छोड़ा इधर गया। दूसरे लोग सोचते हैं शरीर में चेतना उत्पन्न हो गई थी और किसी कारण से खत्म हो गई। उत्क्रामंतम शब्द भगवान दे रहे हैं, उत्क्रामंतम का अर्थ शरीर को छोड़कर जाना है, या नहीं कि शरीर के कुछ प्राकृतिक पदार्थ मिले थे और बस चेतना उत्पन्न हो गई, मैटर से चेतना उत्पन्न हो गई, ऐसी बात नहीं। आत्मा शरीर को छोड़ता, शरीरम जद अवापनोति जद चापित क्रामति स्वर, यह जीव समर्थ है। शरीरम जद अवापनोति, कोई कोई शरीर ग्रहण करता है और उत्क्रामति, कोई कोई शरीर छोड़ता है। यह शरीर ग्रहण करता है और यह शरीर छोड़ता है। ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है कि शरीर में शक्ति नहीं है कि वो आत्मा को पकड़ करके रखे, आत्मा शरीर के भीतर आया है। आत्मा यदि शरीर छोड़ करके जाना चाहता है तो चला ही जाता है, और वास्तव में आत्मा नहीं जाना चाहता, लेकिन आत्मा जिसके अधीन है वो कहता चलो निकलो निकलो। तो आदमी समझता है कि शरीर रोगी हो गया इसलिए आत्मा निकल गया, ऐसी बात नहीं है। जितना स्वस्थ शरीर रहता है फिर भी आत्मा निकल जाता है। जैसे मान लीजिए दो ट्रक आपस में लड़े, एक्सीडेंट हुआ, तो अगर दोनों ओर के ड्राइवर मर जाते हैं तो लोग कहते हैं शरीर की ऐसी दशा हो जाती है तब आत्मा निकलकर भाग जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब आत्मा के निकलने का टाइम आ जाता है ईश्वर द्वारा सेट किया हुआ, तब टकराहट होती है, पहले से निश्चित रहता है इसी समय इसको निकाला जाएगा। टकराहट होने से आत्मा घबरा कर निकल कर भाग गया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा पर कोई चोट नहीं लगेगी और न तो आत्मा जलेगा न गीला होगा। तो ट्रक के ढाई मारने से आत्मा का कुछ नहीं होने वाला है, समय बीच में वो पिसा जाएगा। इतना सूक्ष्म है, केस के अग्र भाग के 100 टुकड़ा कीजिए, अग्र भाग को केशाग्र बालाग्र सत भाग से श्रद्धा कल्पित देख रहे हैं केस कितना सूक्ष्म होता है, उसका बिल्कुल अग्र भाग लेकर के यदि उसके 100 टुकड़े किए जाए जो संभव नहीं है, और फिर उसमें से लेकर के उसके फिर 100 टुकड़े किए जाए, टुकड़े के उतना छोटा जीव है, क्या वो पिसाएगा शरीर में, क्या उसको दिक्कत है, कोई दुख नहीं है। लेकिन परमात्मा उसका दिन रख देते हैं कि इस दिन तक तुम्हें शरीर में रहना है और जाना है, उसको पता नहीं रहता। लोग कहते ओ एक्सीडेंट हो गया इसलिए चला गया, और एक्सीडेंट नहीं होता है वे लोग कैसे चले जाते हैं। इतने एक दो बार मैं देखा, एक दो आदमी ऐसे मरे तो हमारे पास एक आदमी आया, अभी तक मरे लायक ना रहन, कैसे मर कोई, मरने लायक कोई शरीर होता है क्या, मरने लायक मतलब बूढ़ा हो करके मरे होते तो कहा जाता कि अब मरने लायक हो गए, अभी तो ये मरने लायक नहीं थे ये नहीं। लेकिन वह परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जब अपने अंश को खींचना चाहे खींच लेंगे, और जैसे सूर्य अपनी किरणों को समेट लेते हैं, प्रलय काल में यही होता है, भगवान बिखरे हुए इन जीवों को अपने अंश को खींच लेते हैं, समस्त सृष्टि समाप्त हो जाती, डल मैटर रह जाता है, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, सुनसान डार्कनेस अंधकार रहता है, जिसको प्रलय कहते हैं। और वो आत्मा को तो इस तरह से खींच ही लेते हैं, रात्रि में जो हम लोग सोते हैं तो शयन भी भगवान की ही एक क्रिया है, वही बाध्य कर देते हैं कि हम सो जाते हैं। आत्मा शरीर में रहता है लेकिन काम नहीं करते, केवल है, सोता रहता। भगवान ने कहा है एक जगह कि मैं सुलाता हूं सबको, मैं जगाता हूं, मत स्मृति ज्ञान अपोहनम छ, अपोहनम उनके कारण निद्रा आ जाती है, भूल जाते हैं सब कुछ, अपोहनम। और कहीं सार्वजनिक स्थान पर अपोहनम हो गया, कोई कुछ उठा करके ले गया और जगने पर कहते आ ये चला गया, सोए सोए क्यों नहीं देख रहे थे, ये चला गया वो चला गया, जीव इस तरह से आप देखो। तो भगवान के बिना वास्तव में कोई वैल्यू नहीं है। वो पांडव हो चाहे जादव हो, चाहे आज का कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग हो, कृष्ण के बिना कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। जैसे आत्मा के बिना यह शरीर व्यर्थ है, वैसे हमारा जीवन कृष्ण के बिना व्यर्थ है। वास्तव में कृष्ण इस संसार में न रहे तो पूरा ब्रह्मांड मुर्दा है, मरा हुआ है। वही है इस ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदक शाही के रूप में, इसीलिए पेड़ उग रहे हैं, ये फसल उग रही है, कुछ हो रहा है खाने के लिए। जैसे शरीर में जब तक जीवात्मा है तब तक कुछ शरीर से उत्पन्न होता है, केश बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, लेकिन आत्मा नहीं रहे तो फिर केश नहीं बढ़ेगा, नाखून नहीं बढ़ेगा, शरीर डेवलप नहीं करेगा। ठीक यही हालत ब्रह्मांड की है, तो उनकी शक्ति से जगत जीवित है। तो कुंती महारानी इस बात को समझ रही हैं कि आपके बिना हम लोगों की कोई कीमत नहीं, इसलिए आप मत जाइए। यही प्रार्थना का सार, आप मत जाइए। पुनः कहती हैं, ये तो हम लोगों की दशा है, और अस्मत पाल्य भूमि की बात कह रही हूं। हमारे द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा जो पालित भूमि है हस्तिनापुर की, नेयम शोभिष्यते तत्र जथे दानिम गदाधर, हे गदाधर, इयम न शोभिष्यते तत्र, तत्र मतलब आपके चले जाने के बाद, इयम न शोभिष्यते, यह भूमि शोभित नहीं होगी, इसकी शोभा नहीं रहेगी। तो पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित है, जैसे इदानी इस समय यह पृथ्वी सुंदर लग रही है, हस्तिनापुर की भूमि, तो पदै अंकिता, आपके चरण चिन्हों से अंकित होकर के जैसी सुंदर भूमि लग रही है, ये आपके चले जाने के बाद इयम न शोभिष्यते, यह शोभित नहीं होगी, यह भूमि एक विधवा की तरह हो जाएगी आपके बिना, शोभित नहीं होगी। आपके चरण चिन्ह जब इस हस्तिनापुर की गलियों में या बाहर पड़ते हैं तो यह अलंकृत होते, शोभित होते, सुंदर लगती। और आपके चरण कैसे हैं? स्वलक्षण विलक्षित है, स्वलक्षण विलक्षित है। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह पहचान लिए जाते हैं क्योंकि उसमें स्वलक्षण है। स्व का अर्थ है असाधारण, असाधारण का अर्थ होता है कि अन्य के चरणों में वो चिन्ह नहीं है, केवल कृष्ण के चरण में है। जैसे अंकुश, बज, ध्वज, कमल, स्वस्तिक, यज्ञ कुंड इत्यादि, श्री कृष्ण के चरण तल में कुछ स्पेशल चिन्ह है, उसको स्वलक्षण कहते, अपना लक्षण जो केवल कृष्ण में। तो उन लक्षणों से आपके चरण चिन्ह को कोई भी पहचान लेता है, चलता है, यहाँ कृष्ण का चरण चिन्ह पड़ा है। आपके चरण चिन्हों से अंकित होकर यह हस्तिनापुर की भूमि आज इदानी जथा शोभते तथा तोई गते सती न शोभिष्यते, आपके चले जाने के बाद यह शोभित नहीं होगी। इसलिए प्रभु इस भूमि की शोभा के लिए भी आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए, यहीं घूमिए, जैसे आपकी इच्छा कर रहिए, लेकिन यहां से मत जाइए, यह वीरान हो जाएगी। बिलखात कुल देशवा बिरन बदरा, मनमोह जी ने लिखा है, एक कवि है मनमोह जी, लिखे हैं राधा रानी बादल को दूत बनाकर भेजती हैं, तो उसमें संदेश में कहती हैं कि कह दी है सारा ब्रज जरे बरसात में, और दिनवा चैन निंदियो न आवे रात में, जमुना झुरात फूल पात मुरझात हो बिरन बदरा, बिलखात कुल देशवा बिरन बदरा। तो सारा देश रो रहा है कृष्ण के बिना, राधा रानी यह कहती है, वीरान हो गया है, सुनसान हो गया है। कह दी है सारा ब्रज जरे बरसात में, बरसात का महीना है, वर्षा हो भी रही है लेकिन सारा ब्रज जल रहा है। कह दी है सारा ब्रज जरे बरसात में, अंत में कहते जमुना झुरात फूलपात मुरझात हो बिरन बदरा, जैसे जेठ में वैशाख में फूल पत मुरझाते हैं, ऐसे बरसात में सब जल रहे, पानी बरस रहा है फिर भी जल रहे, भीष्म के बिना। यह भूमि शोभित नहीं होगी जब आप चले जाएंगे, तब हमारे लिए यहीं रुकिए, इस भूमि के लिए रुकिए। जब यह सुखी रहेगी तो यहाँ के वासी भी, यहाँ के निवासी सब सुखी रहेंगे। तो जनता के सुख के लिए, हमारे सुख के लिए आप यहीं रहिए, यह प्रार्थना है। तो द्वारका के लोग कैसे सुखी रहेंगे? यह केवल भूमि की बात नहीं है, वास्तव हमारे देह की शोभा तब है जब यह कृष्ण के चिन्ह से अंकित हो। अरे कम से कम आज से तिलक तो धारण करो जो लोग नहीं करते हैं, इस मुर्दा शरीर को सजाद जीवित करो। तो तिलक के बिना ये मरा हुआ देह है, ये माटी है वास्तव। कम से कम कृष्ण का चिन्ह धारण कर लेते हैं तब शोभते, यह सुशोभित होता है देह। इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिनके ललाट पर तिलक होता है वे अच्छे लगते हैं, जिनके ललाट पर तिलक नहीं होता है वे वैष्णव के समाज में कम से कम अच्छे नहीं लगते, और जगह भले अच्छे लगे। ये कृष्ण का चिन्ह धारण किया जाता है शरीर के 12 अंगों पर, और कंठ का भूषण है, गहना है कंठ। यह है वैष्णव का श्रृंगार, यह तुलसी दल बांध कर गले में और तिलक करके यह देह कृष्ण को अर्पण किया जाता है। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिन तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, हमारा मन, हमारा देह या हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हमारा धन, जो कुछ भी है, मैं आपको अर्पण करता हूं, मैं आपका दास हूं। तो हम लोगों को जो कुछ भी प्राप्त है, देह प्राप्त है, किसी को भूमि प्राप्त है, धन प्राप्त है, स्वजन प्राप्त है, तो सबका संबंध कृष्ण से करा देना चाहिए, तब सभी सुशोभित होते हैं। नहीं तो कृष्ण के बिना कोई शोभा नहीं है, कोई आनंद नहीं। तो इदानीम जथा इयम भूमि शोभते तथा त्वयि गते न शोभिष्यते, शोभित नहीं होगी। यह है भगवान में दया उत्पन्न कराने की विधि कि हमारे दुख को देख करके रुक जाए, न जाए, इस भूमि की, भूमि पर बसने वाली जनता के दुख को देख करके रुक जाए। और वास्तव में भगवान रुक गए, रथ पर सवार थे, जाने के लिए तैयार, बिल्कुल सब तरह समझा बुझा करके तैयार थे, फिर भी माता कुंती के कहने से रुक गए। आजकल कोई ऐसा घर गृहस्थी में रहने वाला आदमी रुकेगा? आरक्षण हो गया है, स्टेशन पर चला भी गया है, छोड़ने लोग जाए और कहे कि मत जाइए, तो नहीं आएगा उतर करके, जबकि उसको एक पत्नी है, फिर भी इतना फिकिर में है। 16,108 पत्नियों का पति लौटा, ठीक है, कोई बात नहीं बुआ जी, जब आपकी यही इच्छा है नहीं। भगवान प्रार्थना सुनते हैं। तो अब कृष्ण के रहने से क्या क्या और शोभा है? शोभा के साथ साथ पृथ्वी समृद्ध है, इमे जनपदा समृद्धा सुपक औषधि वीरुधा। ये जो जनपद है, हस्तिनापुर के जो जनपद हैं, क्षेत्र हैं, सुरिद्धा सुरिद्धा अति रिद्ध, अन्न भरे पड़े हैं, फल फूल भरे पड़े हैं, सुपक औषधि विरुद्ध, औषधि माने अन्न, अन्न खूब सुंदर तरीके से पके हुए हैं, फल रहे। इस समय एक एक एकड़ में हजारों टन गल्ला होता होगा, पृथ्वी इतना आनंद में थी कि वो उत्पन्न कर रही थी, दे रही। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिपात से प्रसन्न होकर। भगवान जिधर देखते थे उधर खेती लहलहा जाती थी, अपने आप खेतों में फसलें कई गुना अधिक होती थी। सुपक औषधि विरुद्ध, विरुद्ध माने लताएं, औषधि उसे कहते हैं जो एक बार फल दे करके सूख जाता है, जैसे गेहूं चना एक बार फलते हैं इसके बाद सूख जाते हैं, उनको औषधि कहते हैं। तो हस्तिनापुर के क्षेत्र में महाराज युधिष्ठिर के उस राज्य में जहां जहां भगवान घूमते थे अर्जुन के साथ, जिस जिस क्षेत्र में घूमते थे उधर उधर 10 गुना फसल बढ़ी रहती थी, इस तरह अधिक से अधिक अन्न होता था, खाद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आजकल खेती करने में लोग खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल देख देते थे तो बहुत फसल होती थी। इसलिए भगवान को रथ पर घुमाना चाहिए कि देखें कम से कम इन दीनहीन जीवों को, तो ये फूलेंगे फलेंगे सुखी रहेंगे। रथ यात्रा जरूर निकालनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग आ जाएं, वो भले न देखें जगन्नाथ जी को, लेकिन जगन्नाथ जी तो देख देंगे, तो उनका शरीर निरोग होगा, धनी होंगे, ठीक से रहेंगे, गरीबी मिटेगी। इस ठाकुर जी को गलियों में घुमाना या लोगों को मंदिर में लाना ये बहुत आवश्यक। तो इन्हें जनपदा श्रद्धा बहुवचन में बोल रही, सुपक औषधि विरुद्ध बनाद्री नद्य धनवंतो हे धन ते तव वीक्षित तव वीक्षित, आपके वीक्षण से आपके दृष्टिपात से वन पहाड़ नदी समुद्र सब खिल गए। वन हरा भरा है, बारहों महीने फल फूल दे रहा है, और अद्री पर्वत बहुत प्रसन्न है, उन पर पेड़ खिले हैं, उनसे रत्न प्रकट होते हैं, नदियों में बारहों महीने जल भरा रहता है, स्वच्छ जल अमृत जल। समय ऐसा समय नदियों का पानी अमृत जैसा, आजकल तो नदियों का पानी नाली जैसा हो गया है, और अब बोतल में पानी बेचा जा रहा है, वो भी पानी किसी काम का नहीं, डीजल से भी महंगा पानी लोग पी है। इतना कंडम युग आ गया, इतना भ्रष्ट युग आ गया, क्या पानी पीने को नहीं मिल रहा है आदमी को, और क्या मिलेगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के राज में जब श्री कृष्ण घूमते थे तो नदियों का पानी अमृत के समान था, भरा हुआ तट गर्मी के महीने में भी, और समुद्र रत्न उगलते थे अपने तटों पर, भीतर का रत्न, इतनी खुशी होती थी, वो रत्न उगलते थे और मनुष्य लाते थे उसको खींच कर। अब तो समुद्र कुछ मरी हुई मछलियां उगल देता है या प्लास्टिक का थैला उगलता रहता है, और उसी को कुछ मछली मारने वाले लोग उठा उठा करके लाते। एक दिन मैं देखा समुद्र तट पर टहलने गया था जुहू में, अधीसी बार, तो 15-16 कौवे जुटे हुए थे, तो कौवे मरी हुई छोटी छोटी मछली उठा रहे थे, एक आदमी आया कौओं को भगा करके वो उठाने लगा। अब थे ना कोई हमारे साथ थे, वो देखे थे, आश्चर्यचकित हुआ, इतनी छोटी छोटी मछलियां उठा रहा था और कौवे बेचारे देख रहे थे, ये विपद कहां से आ गया। मैं कहा तो कौओं का आहार मार रहा है, समुद्र अब रत्न नहीं उगल रहा है, रत्न उगले कैसे, महाबैतरणी नदियां तो गिर रही हैं बंबई से, है ना, मल मूत्र की नदी। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि नरक के चारों तरफ परिखा भूता एक नदी है, उसे बैतरणी कहते हैं, उसमें मल मूत्र कफ पीभ खखार सब भरा हुआ है, और उसकी दुर्गंध से पूरा नरक दुर्गंधित रहता है, नरक की हवा बहुत दूषित उस नदी के कारण। जब हम लोग इधर जाते हैं प्रीचिंग में और बांद्रा पार करके माहिम जाते हैं, उसके बीच में एक बैतरणी आती है, देख करके उसकी गंध से याद आ जाता है वो बैतरणी कितना भयानक होगी, जब ये बैतरणी ऐसी है और उस बैतरणी के तट पर लोग बसे हुए हैं, कितने लोग सोचते हैं कि हम तो बम्बई में, हम तो बहुत सुखी हैं, इतनी सुगंधित हवा में जी रहे हैं, बहुत सुखी। तो भगवान जब थे, विद्यमान थे, तो हवा बिल्कुल शीतल सुगंधित बहती थी, नदियां स्वच्छ थी, समुद्र रत्न उगलते थे। ये धनते माने सब बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, सुख से हैं। क्यों? तो इच्छित है, आपके द्वारा देखे जाने के कारण। कृष्ण जिस वृक्ष पर देख देते थे वो फलने फूलने लगता था, तत्काल बढ़ने लगता था। ऐसे ये धनते शब्द सिद्ध कर रहा है। नदी पर देखते थे तो उसका पानी उफान मारने लगता था, क्योंकि वास्तव में जो परम आनंद घन भगवान है, पूर्ण चैतन्य परमात्मा, उनकी आंखों में वो शक्ति है, उसको देखते ही ये सब खुशी से नाच उठते थे। इसी तरह से फल फूल पृथ्वी दे सकती है, कम से कम अगर कृष्ण नहीं तो कृष्ण जिनके हृदय में है, ऐसे भक्त यदि घूमे दुनिया में तो बहुत फसल होगी, वो सब ठीक रहेंगे। उसने तो भगवान डायरेक्ट घुमा करते थे। कई नदियों पर देखिए, नदियों पर दृष्टि डालिए और पर्वतों पर, सब सबकी हालत दशा खराब हो जाएगी, आप चले जाएंगे तो सब फीके हो जाएंगे, इसलिए हमारी बात मान करके आप यहीं रुक जाइए। लेकिन वृथा, अंततः भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है, तत् सुख सुखी, तो उनका विचार है कृष्ण का सुख ही हमारा सुख है, ये भाव कुंती महारानी का है। तो सोचने लगी कि गमने पांडवा नाम अहितम और अगमने जादवा नाम अहितम इति उभय तो व्याकुल चित्ता सती तेसु समय निवृत्ति प्रार्थयत। कुंती ने सोचा कि यदि कृष्ण को मैं रोकती हूँ तो जादवों का अहित होगा, वे विरह में मर रहे हैं, द्वारका में सब एक एक दिन गिन रहे होंगे, एक एक पल गिनते होंगे कि अब कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। तो जैसे हस्तिनापुर के लोग कृष्ण को देखे बिना बेचैन है, उसी तरह से तो द्वारका के लोग भी बेचैन है, व्याकुल होंगे। तो सोचने लगे यदि रोकती हूँ तो हमारे नैहर के लोग दुखी होंगे, वो भी तो हमारे हैं, और यदि जाने देती है तो अपने पुत्र या यह स्वयं दुखी होती है, हस्तिनापुर के लोग दुखी होते हैं। इति उभयतो व्याकुल चित्ता, यह सोच करके कुंती व्याकुल हो जाती है। व्याकुल हो करके अब दोनों परिवार से स्नेह निवृत्ति के लिए प्रार्थना कर रही है। हमारा न तो नैहर के लोगों में प्रेम रहे, न अपने पुत्रों में रहे, प्रेम केवल आप में रहे। और वास्तव में वसुदेव जी में जो उसकी ममता है अपने भाई में या अपने भतीजों में, बलराम जी आदि में, वह भी भक्ति के कारण है, कृष्ण के संबंध के कारण। लेकिन फिर भी कुंती सोचती है मैं देह के संबंधियों के लिए इतना सोच रही हूं। एक स्त्री का स्वाभाविक ही दो परिवार से संबंध होता है। विवाह के पहले वो अपने माता पिता के यहाँ जन्म लेती है, बढ़ती है, पढ़ती है, खाती है, पीती है और माता पिता की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है बेटी। बेटा लोग तो नहीं सेवा करते, वो तो केवल दुख देने के लिए जन्म लेते हैं। लेकिन पुत्री जरूर सेवा करती है माता पिता की, तो माता पिता का स्वाभाविक उसे स्नेह भी होता है। तो बहुत वर्षों तक वह माता पिता के साथ रहती है, लेकिन इसके बाद माता पिता का घर उसे छोड़ करके पति के घर में जाना पड़ता है। तो माता पिता का संबंध बहुत लोगों से रहता है, इसलिए नैहर में भी उसके बहुत से संबंधी होते हैं माता पिता के संबंध के कारण। और जो पति गृह में आती है तो पति के संबंध के कारण देवर से, जेठ से और लोगों से, सास से, ससुर से उसका संबंध हो जाता है। इस प्रकार दो परिवार से उसका संबंध होता है। तो स्त्री दोनों परिवार के विषय में सोचा करती है, क्या करूं, किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम्हें एक आंख निकाल करके दे दो जो मन करे,
तो दायां निकाले या बायां निकाले, दोनों तो अपनी आंख है। स्त्री के लिए अब क्या कहा जाए, वह कृष्ण के विरह में नैहर के लोगों को मारे कि ससुराल के लोगों को मारे। तो कुंती इति व्याकुल चेता हो, उभयतः व्याकुल चेता हो। एक पुरुष का संबंध केवल एक परिवार से होता है, जिस परिवार में जन्म लेता है उसी में रह जाता है, लेकिन कोई कन्या कोई लड़की जहां जन्म होता है वहां नहीं रहती है, वह पति के पास चली जाती है। मैं इस दृश्य से, इस बात से यह कहा करता हूं कि स्त्रियों में सहज समर्पण, समर्पण बिल्कुल स्वाभाविक है। जन्म कहाँ होता है और कहाँ उनका जीवन बीतता है, वे बहुत जल्दी जान सकती हैं कृष्ण को समर्पण करना, क्योंकि समर्पण की प्रवृत्ति उनमें है ऑलरेडी।
कहाँ उनका जीवन बीतता है,
वे बहुत जल्दी जान सकती हैं कृष्ण को समर्पण करना, क्योंकि समर्पण की प्रवृत्ति उनमें है ऑलरेडी। केवल विषय बदलना होता है, वो समर्पण कृष्ण के लिए हो सकता है, लेकिन पुरुषों को कह दिया जाए कि तुम अपना घर छोड़कर दूसरे को समर्पण करो तो दिन भर नौकरी करता है लेकिन भाग करके अपने घर आ जाता है, वो समर्पण नहीं कर सकता है ना। पुरुषों में समर्पण नहीं है, नारी समर्पण की मूर्ति है। भगवान ने अद्भुत हृदय बनाया, जो कुछ भी हो वह दोनों परिवार से संबंधित रहती है, इसलिए दोनों परिवार के हित की चिंता करती रहती है, अपने भाई के हित की, पिता के हित की, माँ की या भतीजों की, और इसके साथ ही साथ पति के घर में आती है तो पति के संबंधियों के हित की चिंता करती रहती है, पति के हित की चिंता करती है। तो चूंकि प्रथा एक नारी है इसलिए दोनों परिवार के विषय में सोच रही है, तो सोच रहे थे यदि मैं रोकती हूँ तो मेरे वसुदेव भाई आदि विरह में मरेंगे, रो रहे होंगे, और जाने देती हूँ तो पुत्रों का। तो फिर कुंती ने विचार किया कि मैं क्यों इन दो परिवार में अटैच्ड हूँ, क्यों मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो भक्ति के दैन्य से सोच रही कि मैं देह का संबंधी मान करके इनके लिए रो रहे हूँ, पुत्रों के लिए या भाई के लिए भतीजा के लिए। तब कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, हमारा जो स्नेह का बंधन है अपने नैहर के लोगों में और ससुराल के लोगों में, अपने पुत्रों में, दोनों को काट दीजिए, दोनों को काट दीजिए, हमारा और कहीं किसी से प्रेम न रहे। जो प्रार्थना कर रही है, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं चिन्धि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। अथ प्रकरण को बदल रहा है, जैसे पहला मनोविचार था वो बदल गया। अथ का अर्थ यहां होगा नहीं 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 नहीं, हमारा जो स्नेह पाशम स्नेह का बंधन है वृष्णिषु और पांडवेशु, पांडुषु और वृष्णिषु, अपने पुत्रों में और अपने भाई आदि में हमारा जो स्नेह पास है इसको छिन्ध, इसको आप काट दीजिए। तो प्रश्न होगा कि किसी का किसी से प्रेम हो तो मैं कैसे काट सकता हूं, किसी का किसी से दृढ़ स्नेह पास है, बंधन है, बाहर थोड़े दिखाई दे रहा है कि कोई कुल्हाड़ी से या किसी चीज से काट दे। प्रीति का स्नेह का जो बंधन है वो सूक्ष्म बंधन है ना, एक व्यक्ति के हृदय में दूसरे व्यक्ति से प्रेम है, आसक्ति है, तो बीच में तो कोई रस्सी दिखाई नहीं दे रही है, काटा कैसे जा सकता है। लेकिन कृष्ण काट सकते हैं, इसीलिए स्नेह पास छेदने समर्थ द्योतकानी विशेषणानी, स्नेह बंधन कृष्ण काट सकते हैं, इसीलिए विशेषण दिए जा रहे हैं। पहला विशेषण देवकी जी कुंती दे रही हैं, विश्वेश, हे विश्व के ईश्वर, विश्व आपके हाथ में है, किसी को किसी से मिलाना या बिछुड़ा देना, किसी के प्रति प्रेम भर देना या घृणा भर देना, जो कुछ भी सब आपके हाथ में है, आप सबके हृदय में है। आपने स्वयं गीता में कहा भी है कि मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम, तो हमारे चित्त को ऐसा कीजिए कि ये द्वारका की के लोगों की याद न करे और न तो हस्तिनापुर के अपने पुत्रों की याद करे। आप समर्थ विश्लेष विश्व के आप कंट्रोलर हैं। कंट्रोलर का मतलब केवल यह नहीं हुआ कि आप पहाड़ नदी आदि को कंट्रोल करते हैं, समस्त जीवों के हृदय को आप कंट्रोल करते हैं। मैं जो एक एक विचार उठता है उसको भी आप जानते हैं, सब आपके हाथ में। इसलिए हमारे चित्त वृत्ति को आप दोनों ओर से काट दीजिए। मैं बहुत व्याकुल हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं कभी कभी भैया वसुदेव जी के लिए रोती हूँ तो कभी अपने पुत्रों के लिए रोती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा किसी में ममता न रहे, हमारी किसी में ममता न रहे। आप काट दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। फिर भगवान ने कहा भाई कैसे, मान लो मैं विश्व का कंट्रोलर हूँ, जन्मदाता हूँ, सब हूँ, लेकिन मैं स्नेह बंधन कैसे काट सकता हूँ? स्नेह पास हृदय की चीज होती है। तब कुंती महारानी कहते हैं विश्वात्मन, क्योंकि आप विश्वात्मा है, विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में आप निवास करते हैं और वहीं से कंट्रोल करते हैं, तो विश्वात्मा कहते हैं। विश्वात्मा, आत्मा का अर्थ होता है अंतर्जामी ईश्वर। जैसे हम लोग कार के भीतर बैठकर कार को कंट्रोल करते हैं या बस के भीतर रहकर बस को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर रहकर और समस्त प्राणियों के भीतर रहकर उनको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल वास्तव में बाहर से बहुत कम होता है ना, भीतर से सारा कंट्रोल है। ऐसा नहीं कोई ड्राइवर बस को पकड़कर ऊपर से ऐसे ठेल करके चला रहा है, कंट्रोल करता है, भीतर बैठा हुआ है और वही चाहे बैक करे, रिवर्स करे, चाहे आगे बढ़ाए, चाहे बाएं काटे, चाहे दाएं करे, कुछ भी करे, भीतर से कर रहा है। आप देख सकते जितनी भी सवारियां हैं मोटरसाइकिल को छोड़कर, बाकी सब भीतर से कंट्रोल हो रहे हैं। तो इस तरह से भगवान सबके भीतर अवस्थित हैं, सर्वस्य चाहम हृदय संविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। और पुनः भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारोहणानि माय। ईश्वर सबके हृदय में है और जंत्र पर आरूढ़ आत्माओं को, जीवों को भ्रामयन घुमा रहा। यह शरीर जंत्र है और इस पर आरूढ़ानि भूतानि, इस पर आरूढ़ है जीव। हम अपने शरीर रूपी मशीन पर चढ़े हुए हैं, बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन हमको घुमा रहा है, खिला रहा है, बुला रहा है परमात्मा, ईश्वर बुलवा रहे हैं। यदि जीव केवल शरीर में रहे और भगवान न रहे तब भी नहीं घूम सकता है न बोल सकता है। भगवान है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां तिष्ठति सबके भीतर है। कहाँ है? हृदय से, हृदय प्रदेश में। तो हृदय कहते हैं कलेजा को, कलेजा जहाँ सांस चलती, यहाँ से सर्कुलेशन होता है सब खून का, यहाँ भगवान है। इसी से कभी कभी हम लोग देखे हैं, हमारे क्षेत्र में लोग कहते हैं, कोई आदमी बहुत झूठ बोलता है तो कहते हैं छाती पर हाथ रखकर बोलो, तो छाती पर मतलब भगवान का चरण छू करके बोलो, तो आदमी छाती पर हाथ नहीं रखता जिंदा हमेशा नहीं रख, भय है भगवान से। तो कई बार कहते छाती पर हाथ रख करके बोलो, तो भगवान हृदय में है, हृदय से तिष्ठति। तो जो हृदय देश में बैठा है किस लिए? मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम, वही स्विच ऑन करता है, ऑफ करता है, स्मृति देता है, विस्मृति देता है, वही नींद दे देता है, क्रोध देता है, कुछ भी करता है, तो वही स्नेह दे देता है। तो आपके हाथ में है ये स्नेह बंधन को काट देना। स्नेह बंधन के काटना है मूल से ही स्विच ऑफ कर दीजिए, कहीं कभी मुझे वसुदेव आदि का चिंतन ना हो या अर्जुन आदि का, मैं नहीं चाहते हूँ कि ये हमारे मन में रहे। कितना बड़ा
और कोई उनसे स्नेह निवृत्ति की प्रार्थना कर रही है। आप इसे समझ लीजिए कि देह का जो स्नेह बंधन है कितना घातक। कुंती के लिए वो घातक नहीं है, कुंती तो दैन्य बस कह रही है। जब कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण के संबंधियों से रहेगा ही, वो कटने वाला नहीं है। कुंती का जो स्नेह था वसुदेव जी के प्रति वो कृष्ण के कारण था, और अपने पुत्रों के प्रति भी जो प्रेम था कृष्ण के कारण था। लेकिन कुंती दैन्य बस विचार कर रही है कि मेरे में बेटा है इसलिए मेरी ममता है। देह का संबंध है, कृष्ण के कारण नहीं है, वो ऐसा सोच रही है। तो देह का जो संबंध है वह कृष्ण प्रीति में बहुत घातक। यदि देह के संबंधी भक्त नहीं हुए तो वास्तव में देह के संबंधियों से जितना भक्ति में विघ्न पड़ता है उतना दूसरे से नहीं। तो कोई आदमी भक्त बनता है तो बाहर का कोई आदमी उसको नहीं डांटता है, घर वाले कहते हैं पागल हो गए हो, अरे संडे को एक बार मंदिर में चले जाते, ये रोज रोज क्या पागलपन कर रहे। लेकिन आप मंदिर में जाइए चाहे नरक में जाइए, बाहर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? वो कुछ नहीं कहते। लेकिन घर वाले तो जहां कृष्ण कॉन्शियस हुए तो उनका दिमाग फटने लगता है, ये क्या हुआ। तो देह के संबंधियों से इस तरह से घाटा होता है, और जबकि उन्हीं के लिए आदमी जीवन भर परिश्रम करता रहता है। कोई है ऐसी माँ जो भगवान से मांगे कि हमारे पुत्रों से ममता हटा दीजिए, और वो भी अर्जुन जैसे पुत्र से, युधिष्ठिर जैसे पुत्र से ममता हटा दीजिए। वे परम वैष्णव है, परंतु कुंती महारानी ने देखा कि जो देह के संबंध के कारण उनमें ममता है ये कटना चाहिए। कृष्ण के कारण जो ममता है वो तो अंतिम श्लोक में कहेंगे, हे कृष्ण सख, हे अर्जुन के सखा, आप में मेरी प्रीति हो। तो जब कृष्ण में प्रीति होगी तो कृष्ण के सखा में रहेगी। मतलब कुंती चाहती है कि आपके संबंध से मेरी प्रीति जादवों में रहे। जो परिवार के साथ प्रीति है स्त्री की, अपने पति या अपने पुत्र या अपने सास ससुर या देवर आदि में, तो वह देह के कारण है ना। और नैहर के लोगों में जो प्रीति है देह के कारण है। भक्ति के कारण कहां प्रीति है? भक्ति के कारण प्रीति कभी कभी देखी जाती है। हम लोग संबंध देखते हैं, जो कभी कभी भागवत में लोग जुटते हैं, खासकर के स्त्रियां जुटती हैं, तो उनके जुटने का बैकग्राउंड क्या होता है? भागवत या कृष्ण। ये हम भी सुन रहे हैं, तुम भी सुन रही हो, हम सब कृष्ण के भक्त हैं, और कृष्ण के भक्ति के कारण आपस में संबंध हो जाता है। यह देह का संबंध नहीं है, है ना। देह के संबंधी तो घर पर होंगे, और आत्मा के संबंधियों से कनेक्शन जुटता है, वास्तविक संबंधी। वैष्णव ही अपने असली बंधु हैं। वास्तव जो विष्णु के हो गए हैं, कृष्ण के हो गए हैं, वही अपने बंधु हैं, वही भाई है, वही सब कुछ है। वास्तव में हम लोग इतने भक्त जुटे हैं तो इसमें देह के संबंध के कारण एकाध जुटे हो, वो भी कोई नहीं जुटे, भक्ति के कारण जुटे हुए। इसको कृष्ण संबंध कहते हैं, निर्बंध कृष्ण संबंध है। कृष्ण के संबंध के कारण हठ होना चाहिए, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। कृष्ण संबंध है निर्बंध, किसी भी विषय में निर्बंध होना चाहिए। निर्बंध का अर्थ होता है हट, हम देखे कृष्ण का संबंध देखेंगे, यह व्यक्ति कृष्ण का है या मेरा है, मेरा पूज्य है। गुरु क्यों पूज्य हो जाता है? क्योंकि वह कृष्ण का होता है। पर आजकल खेद है कि जो लोग कृष्ण को जीरो भी नहीं जानते वो भी गुरु बन गए। भगवान को निराकार कहते हैं फिर भी वो गुरु बने हुए हैं। और ज्यादा लोग तो ऐसे ही गुरु है ना। तो कुंती महारानी की इस उक्ति से हमें सीखना चाहिए कि हम पुत्र से संबंध रखें, पति से संबंध रखें, भाई से संबंध रखें, लेकिन सेंट्रल पॉइंट क्या होना चाहिए? कृष्ण, कृष्ण के कारण, देह के कारण नहीं। देह के कारण संबंध तो इस शरीर में हम आए हैं तो हमारे संबंधी हो गए, यह शरीर छूटेगा फिर दूसरे संबंधी हो जाए। बिल्ली का शरीर प्राप्त होगा तो बिल्ली बच्चे प्राप्त होंगे या जो कुछ भी, कुत्ता का शरीर प्राप्त होगा तो उसमें संबंधी हो जाएंगे। संबंध क्षणिक है, बदलता रहता है, क्योंकि देह क्षणिक है, लेकिन आत्मा का जो संबंध भगवान से होता है तो वह संबंध कभी टूटने वाला नहीं है, वह नित्य रहता है। तो कुंती वास्तव में कृष्ण के साथ संबंध रखना चाहती है और कृष्ण के संबंध के कारण महाराज युधिष्ठिर में या वसुदेव जी में संबंध रखना चाहती है, स्वतंत्र नहीं। कितना बड़ा प्रेम है भगवान के प्रति, सबका अपने बच्चा में प्रेम है, बच्चा के प्रेम के कारण और किसी में है ना। ये देखा जाता है, जैसे कई लोग कहते हैं हम तो इस बाबा के भक्त हैं, तो उस बाबा के भक्त है। एक व्यक्ति हमसे कहा हम तो साईं बाबा के भक्त हैं। मैं कहा क्यों? उन्होंने आशीर्वाद दिया है हमको, ये चीज मिला है, तो तुम तो उस चीज के कारण उनको मान रहे हो ना, तो सेंट्रल पॉइंट तुम्हारी वो वस्तु हुई, वो नहीं हुई। अंततः तुम्हारा प्रेम उनसे नहीं है, प्रेम है उस वस्तु से। लेकिन कुंती महारानी की प्रार्थना का सार है कि प्रेम कृष्ण से और उनके कारण और किसी से, स्वतंत्र किसी से कोई संबंध ही नहीं है। प्रेम होने की बात ही क्या है? अगर स्नेह बंधन है तो वह गलत। स्नेह को यहाँ पास कहा गया, यह अजर पास है। इतनी मोटी रस्सी हो और बंधी हो कहीं किसी में तो उसको भी काटा जा सकता है, लेकिन स्नेह का बंधन बहुत सूक्ष्म है, दिखता भी नहीं है, केस से भी सूक्ष्म है, लेकिन मरते दम तक नहीं कटता। स्नेह पासम, इतना कठिन पास।
ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्तेष्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु।
तो भगवान ने सारे जगत को स्नेह के बंधन में बांध करके रख दिया है। श्रीमद् भागवतम में कई जगह ऐसे प्रसंग हैं कि कुछ लोग शिकायत करते हैं भगवान की, इसलिए कि भगवान ने जगत की रचना की या ठीक किया, भूमि बनाया, पहाड़ बनाया, नदी बनाया, आदमी बनाया, पशु बनाया, ठीक किया, लेकिन एक दूसरे को स्नेह बंधन में बांधा क्यों, और बांधा तो तोड़ता क्यों है? गोपियां भी इसकी शिकायत करती हैं ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को। तो स्नेह एक पास है, पास का अर्थ होता है बंधन। प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक जीव इस स्नेह बंधन में बंधा हुआ है, और स्नेह का मूल आधार क्या है? देह। देह मूल आधार है। स्नेह सिखाना नहीं है किसी को, सभी जीव स्नेह कर रहे हैं, लेकिन इस स्नेह की आधारशिला बनाना है कृष्ण को। बस, कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्नेह करना नहीं जानता? सभी स्नेह करते हैं, अपने बच्चे के प्रति, पत्नी के प्रति, या पत्नी अपने पति के प्रति, भाई भाई के प्रति, सभी स्नेह से भरे हुए हैं। यहाँ तक पशु पक्षी भी स्नेह करते हैं, बिजली के तार पर बैठ करके दो पक्षी गले में गला मिलाते हैं, चोंच में चोंच मिलाते हैं, उस स्नेह का सूचक है ना, स्नेह है उसमें। लेकिन उस स्नेह का आधार है देह, और देह टेम्पररी है, देह मर जाएगा बस, समझ खत्म होगा। तो हमें समझना है कि हमारे स्नेह का आधार कौन है, वो है भगवान प्रेमा पुमर्थो महान। तो और जिस कारण से स्नेह संसार में है उसको काटना चाहिए और उस स्नेह का आधार विषय कृष्ण को बनाना चाहिए। तो कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि स्नेह पासन छिन भी दृढ़म, जो बहुत दृढ़ बंधन है हमारा देह के संबंधियों में, उसको आप छिन भी काट दीजिए। तब भगवान मानो कहते हैं कि बुआ जी, यदि आप अपने देह के संबंधियों से स्नेह बंधन काटना चाहती हैं, तो मैं भी तो एक जादव हूं, क्या हमसे भी स्नेह हटाना चाहती हैं क्या? कुंती जी ने कहा कि जादवों से और पांडवों से मेरा स्नेह बंधन समाप्त कीजिए। तो भगवान कहते हैं मैं भी तो एक जादव हूं, तो क्या हमसे भी स्नेह निवृत्ति चाहती हैं क्या? कुंती जी कहते नहीं 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 नहीं, त्वयि मे अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति मुद बहता दद्धा गंगे वौघ मुदनवती। त्वयि आप में मति अनन्य विषया सती, मेरी मति अनन्य विषया हो करके आपके रति का उद्वहन करे, तो आप में हमारी प्रीति बढ़ती जाए, जैसे गंगे वौघम उदनवती, जैसे गंगा जी ज्यों ज्यों समुद्र में जाती हैं, त्यों त्यों उनकी धारा बढ़ती जाती है, जल का ओघ बढ़ता जाता है ना। गंगोत्री से बहुत थोड़े धारा में चलती है, बाद में आकर के कई नदियां मिलती जाती है। प्रयागराज में श्री जमुना जी मिलती है, और इस तरह आगे चल करके सरजू और इधर सोन महानद मिलता है, और कलकत्ता जाते जाते गंगा जी बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे कलकत्ता में पहले ही गंगा जी की धारा दो भागों में बट गई है, एक धारा बांग्लादेश में जाती है, इसको पद्मा कहते हैं, रक्का बांध के पास। लेकिन फिर भी गंगा जी ज्यों 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 आगे बढ़ती है त्यों त्यों उनकी धारा बढ़ती जाती है। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि हमारी मति अनन्य विषय हो जाए, न अन्य विषय, आपके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति में या वस्तु में मेरी मति न लगे, इसको अनन्य विषय कहते हैं। या हमारी मति में कोई और कामना न हो, तो हमारी अति ऐसी मति हो करके, अनन्य मति हो करके, त्वयि रतिम उद्वहता, आपके प्रीति को आपके प्रेम को बढ़ाती जाए, जैसे गंगा जी की धारा कोई विघ्न बाधा नहीं गिनती है। कोई विघ्न आता है फिर भी गंगा जी की धारा समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, ऐसे ही हमारे जीवन में आपके प्रीति को तोड़ देने वाला कोई भी कारण भी हो तो हमारी बुद्धि रुके न, केवल आप में प्रेम रहे और किसी में नहीं, इसको अनन्य विषय कहते हैं। न हमारी प्रीति नैहर के लोगों में रहे और न ससुराल के लोगों में रहे, हमारी प्रीति हमारा प्रेम केवल आप में रहे, तो अनन्य विषय होकर। रति उद बहताद, उद का अर्थ है अधिक, और बहताद मतलब ढोवे, हमारी मति में आपके प्रति प्रेम रहे और वह प्रेम दिन पर दिन बढ़ता जाए, आज की अपेक्षा कल बढ़े, कल की अपेक्षा परसों बढ़े, क्षण क्षण में प्रेम बढ़ता जाए और सब ओर से हमारा प्रेम हट जाए। यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है, और इस प्रार्थना के संपादन के लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे श्री कृष्ण, कृष्ण सख, जो भी है आप हमारे नेत्र और मन के लिए बड़े सुखद हैं, आनंद घन परब्रह्म है, आप श्री कृष्ण है, सुंदर कृष्ण, श्री कृष्ण। महारानी कुंती यहाँ पर श्री लगा करके कृष्ण को संबोधित करते हैं, श्री कृष्ण। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके सौंदर्य के कारण उनको देखकर कहते हैं श्री कृष्ण, सुंदर कृष्ण, श्री कृष्ण, अथवा श्री से युक्त कृष्ण। श्री माने सौंदर्य, तेज, शोभा, और कृष्ण सखा, हे कृष्ण के सखा, श्री कृष्ण, कृष्ण के सखा। तो अर्जुन का एक नाम है कृष्ण। तो अब कुंती महारानी अपनी भूल भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कह दिया कि अर्जुन आदि से भी मेरी प्रीति हट जाए,
तो उनको लगा कि अरे मैं कृष्ण के सखा से प्रीति हटा रही हूँ, तो उस भूल को सुधार रही है कि हे कृष्ण के सखा, हे अर्जुन के सखा, आपके सखत्व के कारण, मित्रता के कारण अर्जुन में मेरी प्रीति हो, ये भाव। अर्जुन आपका है इसलिए वो मेरा प्रिय है, आपकी प्रियता के कारण। हे अर्जुन के सखा, हे कृष्ण के सखा श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान नमस्ते, सब जगह नमस्ते लगेगा, बारंबार प्रणाम करती हूँ। कृष्ण के साथ, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण की का सख्य बहुत प्रसिद्ध है, संपूर्ण महाभारत भरा पड़ा है किस तरह अर्जुन के साथ भगवान सख्य भाव रखते थे। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है कि अर्जुन जब सोते थे तो उनके शरीर के प्रत्येक अंग से कृष्ण 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 शब्द निकलता था जब सोते थे, ऐसे स्पष्ट उच्चारण होता था। केवल जीवा से नहीं, शरीर के प्रत्येक अंग से कृष्ण कृष्ण शब्द निकलता, वो कृष्णमय थे। इसीलिए भगवान अपना घर द्वारका छोड़कर, अपनी पत्नियों को छोड़कर भी अर्जुन के साथ ज्यादा रहते थे। और यह यदि कैलकुलेशन किया जाए कि भगवान श्री कृष्ण किस व्यक्ति के साथ ज्यादा रहे, तो वो है अर्जुन। सबसे अधिक अर्जुन के साथ बिताए हैं, अर्जुन के लिए कुछ भी कर सकते थे, अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन के साथ खांडव वन का दाह किए, वनवास के समय भी अर्जुन से भेंट करते थे, और या तो अर्जुन द्वारका में रहते थे और नहीं तो कृष्ण हस्तिनापुर में रहते थे, प्राय संग होता था। आपने कथा में सुना कि आगे कथा आएगी कि अर्जुन भगवान का छत्र तान कर चल रहे थे, द्वारका जाना हुआ तो साथ में गए, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर को यह भी शंका थी कि कृष्ण जा रहे हैं द्वारका तो बीच में पथ में इनके शत्रु इन पर आक्रमण कर सकते हैं, तो सात्यकी और अर्जुन को महाराज युधिष्ठिर ने बॉडी गार्ड के रूप में दिया कृष्ण, और उसके साथ एक औक्षौणी सेना भी दिए, स्नेह बस। वो ये भी जानते हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं, भगवान हैं, लेकिन फिर भी स्नेह बस सोचते हैं हमारे मामा के लड़के हैं। बहुत लोग रंज हैं इस महाभारत युद्ध में इनसे, तो बीच में कोई कुछ कर सकता है, यह है स्नेह युधिष्ठिर महाराज। इसलिए एक चतुरंगी सेना दिए थे और अर्जुन को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तुम कृष्ण की रक्षा करते हुए जाओ, और ऐसे अर्जुन अपने से भी जाते थे। तो कृष्ण के साथ द्वारका जाते थे और द्वारका से जब कृष्ण आते थे तो फिर चलते चले आते थे, सर्वदा कृष्ण के साथ बीतता था। हे अर्जुन के सखा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। वृषणी ऋषभ, और फिर जो उन्होंने कहा था कि नैहर के लोगों में मेरा प्रेम न रहे, तो पुनः कह रहे हैं हे जादवों में श्रेष्ठ, मतलब समस्त वृषणी वंशी आपके प्रिय हैं, तो आपके संबंध से हमारे भी प्रिय हैं। आपके संबंध से मुझे बलराम प्रिय है, मेरे भैया वसुदेव जी प्रिय है, आपके पुत्र प्रद्युम्न प्रिय है, और जो भी है वो सब आपके संबंध से हमारे प्रिय है। अवनी ध्रुव राजन वंश दहनम दहनम, ये संबोधन है। इस पृथ्वी के जो द्रोही राजा है उस राजाओं के वंश को जलाने के लिए, बांस के झुरमुट को जलाने के लिए आप अग्नि के समान है। और हे अनपवर्ग वीरज, हे अमित प्रभाव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान के समस्त नामों में कृष्ण और गोविंद बहुत श्रेष्ठ। गोविंद उनका वास्तविक नाम है, पर नाम। बचपन में इन्हें नाम मिला था कृष्ण, तो किसी बच्चे का नाम रख देते हैं तो ऐसे रख दिया गया था कृष्ण नाम, लेकिन इनका वास्तविक मुख्यतम नाम है गोविंद, गोविंद पर नाम, चैतन्य चरितमृत में लिखा गया। और यह नाम भगवान इंद्र ने दिया गोविंद, गौओं के रक्षक और गोपीजनों के परम प्रिय। गोवर्धन धारण करने वाले, गोविंद शब्द से यह सारी ये सब सारी लीलाएं व्यक्त होती। गोविंद, हे गोविंद, हे गो द्विज सुरारी हरावतार, गौ ब्राह्मण देवता आदि का दुख हरने के लिए आप अवतार लिए हैं। हे जोगेश्वर, हे उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले, मैं देखते हूँ किस तरह आपकी जोग शक्ति है। हे जोगेश्वर, हे अखिल गुरु, हे सबके पूज्य, हे सबके हितैषी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भगवान की बुआ होकर भी उनको प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए अंत में जगत गुरु संबोधन करती हूँ। मैं आपकी बुआ हूँ, आपने कृपा करके हमें स्वीकार किया है, लेकिन वास्तव में तो आप सबके पूज्य हैं। आप ब्रह्मा शिवादी के द्वारा भी प्रणाम में हैं, तो मैं तो एक हीना नारी हूँ, दीन हूँ, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रही हूँ, और आप हमें यही वर दीजिए कि सब ओर से मेरी मति अनन्य होकर के आप में केवल लगे, आपका प्रेम दिन पर दिन बढ़ता जाए। सूत गोस्वामी कहते हैं, पृथ्वेथम कल्पदै परिणुता खिलोदय मंदम जहास वैकुंठ मोहयन्निवमाय। प्रथा ने इस प्रकार बड़े सुंदर शब्दों में, कल्पदै मधुर शब्दों में भगवान श्री कृष्ण की अखिल महिमा का वर्णन किया। संपूर्ण महिमा का यह क्या मतलब है, लगभग उसने भगवान के समस्त गुणों को टच किया थोड़ा थोड़ा, ये कहने का आशय। पूरा वर्णन नहीं कर दिया, लेकिन संक्षेप में सबको टच किया कुंती ने। भगवान के ऐश्वर्य को, माधुर्य को, करुणा को, अवतार के कारण को, उनके प्राय सभी अवतारों को जैसा मैं गिना रहा था, तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है अखिल उदय। उदय माने महिमा, भगवान की जो बड़ाई है, बड़प्पन है उनका, करुणा के विषय में, सौंदर्य के विषय में, ऐश्वर्य के विषय में, और जस वैराग सब कुछ। अखिल उदय, उदय माने महिमा, भगवान की जो बड़ाई है, बड़प्पन है उनका, करुणा के विषय में, सौंदर्य के विषय में, ऐश्वर्य के विषय में, और जस वैराग सब कुछ, जीवों के प्रति सहज हितैषिता, इन सब गुणों को महारानी कुंती ने व्यक्त किया। तो शुद्ध गोस्वामी तो यहां तक कहते हैं कि कृष्ण की अखिल महिमा का वर्णन किया। खिल का अर्थ होता है अधूरा, और अखिल का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण महिमा का। तो कुंती महारानी के मुख से विविध विचारों को सुन करके श्री कृष्ण मंद मंद हंसने लगे। भगवान समझ रहे थे कि एक तरफ तो ये कहती हैं कि आप रुक जाइए, मत जाइए, हम सब कैसे जिएंगे आपके बिना, हम मर जाएंगे, आपका दर्शन नहीं होगा तो, और फिर कहती हैं कि हमारा स्नेह हटा दीजिए इस भूमि से और परिवार से, नैहर के लोगों से और ससुराल के लोगों से, स्नेह पास काट दीजिए, और फिर कहती हैं कि हमारा प्रेम आप में होना चाहिए, और फिर अर्जुन के मित्रता की प्रशंसा कर रही हैं, फिर अर्जुन का मित्र कह रही हैं, वृषि वंशियों का ऋषभ श्रेष्ठ कह रही हैं। तो इस प्रकार से कुंती के हृदय का आंदोलन भगवान पढ़ रहे थे, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, तो इस पर भगवान को हंसी आने लगी, और अपनी बुआ की तरफ देख करके भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मोहयन युवा, मोहित करते हुए से, हासो जनुन माद करी च माया। भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो अपना हंसता हुआ मुख उसे दिखाते हैं, यह बहुत बड़ा दान है भगवान। दो दान भगवान का सबसे बढ़ करके है, एक तो आलिंगन देना और दूसरा मुस्कुरा करके बड़े स्नेह से देखना। वो देखने लगे और उन्होंने कहा वाढ़म, हंसते हुए कहा वाढ़म। वाढ़म ने कहा ठीक है बुआ जी, वही अनन्य विषया, मैंने मांगा कि मेरी मति अनन्य विषया होकर आप में लगे, आपका प्रेम बढ़ता जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा सर ठीक है बुआ जी, ऐसा ही होगा, आपका प्रेम मुझ में बढ़ेगा। यह कह करके फिर भी भगवान उतर गए रथ। ऐसा नहीं कुंती जी ने कह दिया कि हमारा स्नेह बंधन काट दीजिए तो भगवान अब कठोर होकर काट ही देंगे और कहा ठीक है मुझसे प्रेम करो और किसी से नहीं, और किसी से नहीं और मैं चलता। भगवान इतने कठोर नहीं है, वे उतर गए रथ, यद्यपि कुंती ने अंत में उतरने के लिए कहा नहीं, लेकिन भगवान हंसते हुए रथ से उतरे कि बुआ जी ठीक है, आपने जो अंतिम वर मांगा है मुझसे वो ठीक है, आपका प्रेम मुझ में बढ़ता रहे, वो तो है ही और वह निःसीम है, अब क्या बढ़ेगा, लेकिन ठीक है आप जो मांग रही हैं वो होगा। इतना कह करके रथ से उतरे और प्रविश्य गज सावयम हस्तिनापुर में प्रवेश किए, रहे कुछ दिन। कुछ दिन रहने के बाद भगवान ने पुनः कुंती महारानी से छुट्टी मांगा, सुभद्रा जी से छुट्टी मांगा, द्रौपदी से और सत्यवती आदि की। तो स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं। जब भगवान ने अपनी माँ की बात कहा कि मेरी माँ बहुत दुखी होगी, मेरी माँ देवकी दुखी होगी और आपकी पुत्र वधुएं दुखी होंगी, बच्चे दुखी होंगे, सभी हमसे प्रेम करते हैं, मुझे थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर शीघ्र आ जाऊंगा, जैसे आप हमारे बिना नहीं रह सकती हैं वैसे मैं भी नहीं रह सकता हूं, मुझे भी देखने की लालसा होती है, लेकिन क्या करें, अब जिम्मेवारी है, जाना है, उत्तरदायित्व है, छुट्टी दीजिए। तो स्त्रियों के सामने किसी स्त्री के दुख को कह दीजिए तो तुरंत ढल जाती है। तो सभी स्त्रियों ने छुट्टी दे दिया, ठीक है कृष्ण जाओ जाओ। और जब कृष्ण पुनः चलने के लिए तैयार हुए तो राज्ञा प्रेमणा निवारिता, महाराज युधिष्ठिर ने रोक लिया। पहले युधिष्ठिर विदा कर चुके थे, कुंती ने रोक लिया था, अब स्त्रियों ने विदा कर दिया तो युधिष्ठिर ने रोक लिया। युधिष्ठिर महाराज दो रहे थे, बार बार ही कह रहे थे भैया और कुछ दिन रहो, तुम्हारे रहने से हमें सुख मिल रहा है, नहीं तो तुम्हारे बिना यहाँ क्या सुख है, कुछ दिन और रह लो कृष्ण, कुछ दिन और रह लो। इस तरह रोक लिया। कैसे रोक लिया? प्रेमड़ा, प्रेम से रोक लिया। प्रेम का बंधन बहुत बड़ा बंधन है, यह महाराज युधिष्ठिर का प्रेम, राजा के द्वारा प्रेम से रोक लिए गए। चल करके भी परमेश्वर चल जा नहीं पाया, रुक गए। प्रेम का एक बल है महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने रो करके आंसू बहाकर भगवान कृष्ण से कह दिया कि भैया यहीं रहो कुछ दिन रहो कृष्ण, इसके बाद जाना। तो भगवान रुक गए, बिल्कुल रुक गए। और इसके साथ ही साथ भगवान को अपने परम प्रियतम भक्त भीष्म पितामह के पास जाना था, इस तरह चल चल करके रुक रहे थे। अब रुके ही गए, अब जाएंगे भीष्म पितामह के पास। और युधिष्ठिर महाराज का शोक बढ़ने लगा तो व्यास देव, धौम्य मुनि आदि ब्राह्मण ऋषि मुनि सब समझा रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, भगवान भी समझा रहे थे, संसार अनित्य है, युद्ध होता है, मरते हैं लोग, काल के अधीन जगत है, चिंता मत कीजिए। लेकिन जितना समझाते थे कृष्ण और ऋषि लोग उतना ही महाराज का शोक बढ़ता जाता था, जितना समझाते थे उतना और होते थे। श्री सिद्ध स्वामी जी लिखते हैं कि जैसे संधि दूत बन करके गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, तो ऊपर से समझाते थे और भीतर से उसे समझने नहीं दे रहे थे। ऊपर से प्रेम की बात करते थे संधि के, और दुर्योधन के मन में बैठकर बैर को दृढ़ कर रहे थे, शत्रुता को बढ़ा रहे थे। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज को ऊपर से समझा रहे थे और भीतर से उनके शोक को बढ़ा रहे थे, क्योंकि शोक को बढ़ा करके युधिष्ठिर महाराज को ले जाना था भीष्म पितामह के पास, स्वयं दर्शन देना था भगवान को। तो ये कथा कल से प्रारंभ होगी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।